लाउडेटुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसिया सह जिम्मेदारी के संकेत रूप में सभी तरीकों से धर्म सभा की जीवन शैली को बनाए रखे तथा पुरोहितों, धर्म बहनों और आम लोगों के बीच भागीदारी, एकता और मिशन को बढ़ावा दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हम अपने मंगलवार कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिलेक्सित नोस की चर्चा शुरू करेंगे। संत पापा फ्रांसिस ने पवित्र हृदय पर अपना दिल एक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया है, एक नया और अपना चौथा विश्व प्रेरितिक पत्र प्रकाशित किया। दिल एक्सित नोस अर्थात उसने हमें प्रेम किया है अपने में मानव और पवित्र हृदय के दिव्य प्रेम पर आधारित है। यह प्रेरितिक पत्र युद्ध और असंतुलन के मध्य विश्व के लिए एक जरूरत के रूप में उभर कर आता है, जहां हम हृदय की अति महत्वपूर्णता को पाते हैं, जो हमारे लिए प्रेम का स्रोत है। संत पापा फ्रांसिस ने इस विश्व पत्र का प्रकाशन संत मार्गरेट मेरी अलाकोक को यीशु के दर्शन की 350वीं वर्षगांठ पर जुबली की संध्या और धर्माधीक्षकों की धर्म सभा के 2021-2024 के अंतिम सत्र 24 अक्टूबर 2024 को प्रकाशित किया। इस विश्व प्रेरितिक पत्र के 5 अध्याय हैं, जो 202 अनुच्छेदों में विभक्त हैं। यदि विश्व पत्र लाउडातो सी के माध्यम संत पापा दुनिया के उस रूप को हमारे लिए प्रस्तुत करना चाहते हैं जैसे कि ईश्वर ने उसे हमारे लिए दिया है, तो फ्रतेली तुत्ती उसकी प्राप्ति हेतु हमारे लिए दिशा निर्देशित करता है। वहीं दिल एक्सित नोस हमें इस बात की शिक्षा देती है कि हम अपने हृदय को विश्वास और प्रेम के आधार पर कैसे तैयार करें। प्रथम अध्याय में हम आधुनिक दुनिया में हृदय की महत्वपूर्णता का जिक्र पाते हैं। दूसरा अध्याय हमारे लिए ख्रिस्त के प्रेम की निशानियों और शब्दों को व्यक्त करता है। इस विश्व पत्र के तीसरे अध्याय में हमारे लिए कलिसिया का यीशु के हृदय पर चिंतन को प्रस्तुत किया गया है। चौथे अध्याय में हम पवित्र हृदय से संबंधित धर्म ग्रंथ की बातों को पाते हैं, तो वहीं पांचवा अध्याय पवित्र हृदय की भक्ति का सामुदायिक और सामाजिक आयाम हमारे लिए प्रस्तुत करता है। यह दस्तावेज वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में एक आध्यात्मिक प्रत्युत्तर के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें हम यूक्रेन और पवित्र भूमि में युद्ध के संयोजन को पाते हैं, जो हमारे लिए प्रेम और पारस्परिक समझ पर आधारित है, न कि शक्ति के तर्क पर। श्रोताओ, संत पापा फ्रांसिस अपने विश्व पत्र के शुरू में कहते हैं, उसने हमें प्रेम किया है। ये संत पौलुस के कथन हैं, जो हमें इस बात को अनुभव करने में मदद करते हैं कि कोई भी चीज हमें उनके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। संत पौलुस इसे दृढ़ता में कहते हैं, क्योंकि यीशु ने स्वयं इसे अपने शिष्यों से कहा था, मैंने तुम्हें प्रेम किया है। आज भी ईश्वर हमें कहते हैं कि मैंने तुम्हें मित्र कहा है। उनका खुला हृदय हमसे आगे गया है और वह हमारी प्रतीक्षा करता है। वह हमें शर्तहीन रूप में हमसे सिर्फ इस बात की मांग करता है कि हम उन्हें अपना प्रेम और अपनी मित्रता अर्पित करें, क्योंकि उन्होंने हमें सर्वप्रथम प्रेम किया है। क्योंकि यीशु के कारण हम इस बात को जानते हैं और विश्वास करते हैं कि ईश्वर हमें प्रेम करते हैं। दिल एक्सित नोस के प्रथम अध्याय हृदय की महत्वपूर्णता पर चर्चा करते हुए संत पापा कहते हैं कि हृदय को हम बहुधा एक निशानी के रूप में पाते हैं जो यीशु ख्रिस्त के प्रेम की अभिव्यक्ति में उपयोग किया गया है। कुछ लोगों ने इस संबंध में सवाल किया है कि क्या यह निशानी आज भी अर्थपूर्ण है। फिर भी जैसे कि हम छिछलेपन के युग में जी रहे हैं, हम बिना कारण जाने पागलों की भांति एक चीज से दूसरी चीज की ओर भागते रहते हैं और इस भांति हम असंतुष्ट उपभोक्ता गण और एक बाजार तंत्र के गुलाम बन जाते हैं जिसे हमारे जीवन के गहरे अर्थ की कोई चिंता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम सबों को चाहिए कि हम अपने हृदय की महत्वपूर्णता का अर्थ खोज निकालें। श्रोताओं, उत्कृष्ट यूनानी भाषा में कार्डिया शब्द हमें मानव जंतुओं और वनस्पति के सबसे आंतरिक अंग की ओर इंगित कराता है। होमर के लिए यह न केवल शरीर के केंद्र बिंदु की ओर इंगित कराता बल्कि यह मानव की शक्ति और आत्मा, मानव में शक्ति और आत्मा दोनों का बोध कराता है। इलियड में हम इसे विचारों और अनुभूतियों के रूप में पाते हैं जो हृदय से निकलती और एक दूसरे से निकटतम रूप में जुड़ी हुई है। हृदय हमारे लिए इच्छाओं का वह केंद्र बिंदु प्रतीत होता है जहां से हम अपने लिए महत्वपूर्ण निर्णयों को लेते हैं। दार्शनिक प्लेटो के अनुसार हृदय व्यक्ति के तर्क संगत और नैसांगिक पहलुओं को एकजुट करने का काम करता है क्योंकि उच्चतर क्षमताओं और भावनाओं दोनों उन नसों से होकर गुजरते हैं जो हृदय से जुड़ी हुई है। प्राचीन समय से तब इस तथ्य की सराहना की गई है कि मनुष्य केवल विभिन्न कौशलों का योग नहीं है बल्कि वह शरीर और आत्मा का मिलन है जो एक व्यक्ति के अनुभवों को अर्थ और दिशा की पृष्ठभूमि प्रदान करती है। श्रोताओं, धर्म ग्रंथ हमें बतलाता है ईश्वर का वचन जीवित और क्रियाशील है। यह हमारे विचारों और मनोभावनाओं की थाह लेता है। इस भांति यह हमारे हृदय के बारे में कहता है, एक ऐसा केंद्र जो सभी बाहरी दिखावे के नीचे छिपी हुई है, यहाँ तक कि उन छिछले विचारों के नीचे भी जो हमें भटका सकते हैं। एमाउस के शिष्य पुनर्जीवित यीशु के संग अपनी रहस्यमयी यात्रा के दौरान अपने में एक विषाद, भ्रम, हताशी और निराशा का अनुभव करते हैं। यद्यपि इन सारी चीजों से परे उनके अंदर कुछ गहरी चीजें हो रही थीं। राह में जब वे हमसे बातें कर रहे थे तो क्या हमारे हृदय उद्दीप्त नहीं हो रहे थे? श्रोताओं, संत पापा कहते हैं कि हृदय शांति का केंद्र है जहां हम छल कपट और लुका छिपी का कोई स्थान नहीं पाते हैं। यह हमारी सच्ची भावनाओं की ओर इंगित कराता है। हम वास्तव में क्या सोच रहे होते, विश्वास और चाह करते हैं, गुप्त बातें जिन्हें हम किसी से नहीं कहना चाहते हैं। एक शब्द में यह हमारे बारे में जीवन की सच्चाई को वहन करता है। यह हमारे जीवन का अंग है जो ना तो अपने में ना तो प्रतीक और ना ही भ्रम है बल्कि इसके बदले वास्तविकता सत्य है जो हम अपने में पूरी तरह से हैं। यही कारण है कि सामसोन अपनी शक्ति के रहस्य को दलाइला से गुप्त रखता है जिसके बारे में वह पूछती है, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे प्रेम करते हो जब तुम्हारा हृदय मेरे साथ नहीं है? केवल जब सामसोन अपना हृदय उसके लिए खोलता है वह अपने में यह अनुभव करती है कि उसने उसे अपने सारे रहस्य बता दिए हैं। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिल एक्सित नोस की चर्चा शुरू की है। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
प्रभु मेरा चरवाहा, किसी बात की कमी नहीं। प्रभु मेरा चरवाहा। मुझे शंका ही नहीं, मुझे कोई डर भी नहीं, क्योंकि
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। पोप फ्रांसिस ने विश्व में भुखमरी की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है, जो आज हमारे विश्व में सशस्त्र संघर्षों के कारण और भी बदतर हो गई है तथा भोजन या पर्याप्त पोषण से वंचित हमारे विश्व के 3 अरब लोगों को भोजन उपलब्ध कराने में मदद करने के बजाय हथियारों पर भारी मात्रा में धन खर्च किया जा रहा है। पोप फ्रांसिस के संदेश को वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोलिन ने प्रस्तुत किया, जो ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को संबोधित था। ब्राजील 2 दिवसीय G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जो 18 नवंबर को रियो दी जनेरियो में शुरू हुआ, जिसमें 19 सदस्य देशों के अलावा अफ्रीकी संघ और यूरोपीय संघ के नेता भी उपस्थित हैं। G20 के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में सम्मेलन को सुविधाजनक बनाने के लिए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा को बधाई देते हुए पोप ने भाग लेने वाले सभी लोगों के प्रति अपनी शुभकामनाएं एवं आशा व्यक्त की। संत पापा ने हमारे विश्व से भुखमरी दूर करने की तत्काल एवं प्राथमिक आवश्यकता पर जोर दिया है, क्योंकि अब भी लाखों लोग भुखमरी से पीड़ित और परेशान हैं, जबकि टन भर खाना फेंक दिया जाता है। अपने विश्व पत्र फ्रतेले तुत्ती से उदाहरण लेते हुए कि कैसे यह एक वास्तविक कलंक है, इस बात पर जोर दिया कि भोजन एक अविभाज्य अधिकार है। युद्धों, संघर्षों और अन्याय से होने वाली समस्याओं को स्वीकार करते हुए पोप ने संघर्ष से जुड़े सभी क्षेत्रों में स्थिर एवं स्थायी शांति स्थापित करने के लिए नए तरीके खोजने के महत्व को रेखांकित किया, जिसका उद्देश्य प्रभावित लोगों की गरिमा को बहाल करना। उन्होंने बतलाया कि इन युद्धों के कारण होने वाली मौतें और विनाश भी अकाल और गरीबी को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं, जिसका असर संघर्षों के दूर के स्थानों में भी पड़ रहा है, क्योंकि आपूर्ति श्रृंखलाओं में भी व्यवधान आ रहा है। संदेश में पोप आगे लिखते हैं कि आज सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि दुनिया ने अभी तक भुखमरी की त्रासदी से निपटने के तरीके नहीं खोजे हैं, और समाज द्वारा इसे चुपचाप स्वीकार कर लेना एक निंदनीय अन्याय और गंभीर अपराध है। पोप ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक अन्याय भोग की वास्तविकता को और बढ़ा देते हैं, और यह गरीबी, आर्थिक और सामाजिक असमानताओं के एक चक्र को बनाए रखती है, जो हमारे वैश्विक समाज में व्याप्त है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भूख और गरीबी के अभिशाप को मिटाने के लिए तत्काल एवं निर्णायक कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई संयुक्त एवं सहयोगात्मक तरीके से की जानी चाहिए, जिसमें पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी हो। पोप ने आगे कहा कि प्रभावी उपायों के लिए सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और पूरे समाज की ओर से ठोस प्रतिबद्धता की आवश्यकता है, और इनमें बुनियादी वस्तुओं तक पहुंच, महत्वपूर्ण संसाधनों का उचित वितरण शामिल है, जो प्रत्येक व्यक्ति की ईश्वर प्रदत्त मानवीय गरिमा का सम्मान करता है। भोजन बर्बाद ना हो, इसके लिए भी एक सामूहिक कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। संत पापा ने कहा कि आज भी सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन विभिन्न कारणों से यह असमान रूप से वितरित है। पोप लिखते हैं कि इन चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के लिए दीर्घकालिक दृष्टि और रणनीति की आवश्यकता होगी, जो कुपोषण से प्रभावित ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है। उन्होंने उन परियोजनाओं की आवश्यकताओं पर जोर दिया जो बाहर से थोपी ना गई हो, बल्कि लोगों और उनके समुदायों की जरूरतों के जवाब में योजनाबद्ध एवं कार्यान्वित की गई हो। अंत में पोप ने आश्वासन दिया कि वैटिकन मानवीय गरिमा को बढ़ावा देने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा, और दुनिया भर में कैथोलिक संस्थानों के अनुभवों और जुड़ाव को साझा करने के माध्यम से अपना योगदान देगा, ताकि हमारी दुनिया में कोई भी इंसान ईश्वर द्वारा प्रदत्त व्यक्ति के रूप में अपनी दैनिक रोटी से वंचित न रहे। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन के लिए प्रार्थना करते हुए हिंसा को समाप्त करने और स्थायी शांति लाने हेतु कार्रवाई करने का आह्वान किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संत पापा ने लिखा, युद्ध हमेशा एक हार है, मैं हिंसा के पागलपन को अंत करने की अपील करता हूँ। आइए हम अन्यायपूर्ण एवं स्थायी शांति के लिए प्रतिबद्ध हों। हम यूक्रेन के लिए प्रार्थना करें। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के 1000वें दिन पूरे होने पर एक साक्षात्कार में वैटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो परोली ने शहीद यूक्रेनी लोगों की निरंतर पीड़ा की निंदा की है, और नरसंहार को रोकने के लिए मजबूत कूटनीतिक प्रयासों का आग्रह किया है। हम युद्ध की अनिवार्यता को स्वीकार नहीं कर सकते, 19 नवंबर को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के 1000 दिन पूरे होने पर वैटिकन मीडिया को दिए एक साक्षात्कार में कार्डिनल पियत्रो पारोली ने इस बात की जोरदार पुष्टि की है। ब्राजील में G20 के लिए रवाना होने की पूर्व संध्या वैटिकन राज्य सचिव ने उम्मीद जताई कि यह दुखद दिन हर किसी में जिम्मेदारी की भावना जगाएगा, खासकर उन लोगों में जो चल रहे नरसंहार को रोक सकते हैं। इस साल के जुलाई माह में कार्डिनल पियत्रो पारोली ने यूक्रेन के लाविव, ओदेसा और कीव आदि शहरों का दौरा किया था। साक्षात्कार में पूछे जाने पर कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है, कार्डिनल पारोली ने कहा, यह केवल एक गहरी उदासी ही हो सकती है, क्योंकि हम उन खबरों के आदि नहीं हो सकते, उनके प्रति उदासीन नहीं रह सकते जो हर दिन हमें अधिक से अधिक मौतों और विनाश की खबर पहुंचाती हैं। यूक्रेन एक ऐसा राष्ट्र है जिस पर हमला किया गया है और वह शहादत झेल रहा है, जिसने युवा और वृद्ध दोनों तरह के पुरुषों की पूरी पीढ़ियों के बलिदान को देखा है, जिन्हें उनकी पढ़ाई, काम और परिवारों से अलग करके अग्रिम मोर्चे पर भेजा गया है, या उन लोगों की त्रासदी का अनुभव रहा है जो अपने प्रियजनों को बम या ड्रोन हमलों में मरते हुए देखते हैं, और उन लोगों की भी पीड़ा है जो अपने घर खो चुके हैं या युद्ध के कारण अनिश्चित परिस्थितियों में रहने के लिए मजबूर हैं। हम यूक्रेन को मदद कैसे कर सकते हैं? इस सवाल के उत्तर में कार्डिनल ने कहा, सबसे पहले एक ख्रिस्त विश्वासी के रूप में हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमें ईश्वर से युद्ध कराने वालों के हृदयों को बदलने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध कर सकते हैं कि हमारी एकजुटता उन लोगों के लिए कभी कम ना हो जो पीड़ित हैं, जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है, जो ठंड सह रहे हैं या जिनके पास कुछ नहीं है। यूक्रेन में कलीसिया लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम एक समुदाय के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में शांति की मांग करने के लिए अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।